نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. چلیں جی دیکھتے ہیں اس کی تفسیر آیت نمبر 48 سے 82 تک سورۃ الانبیاء. آج ہم شروع کر رہے ہیں, جیسے سورۃ کا نام ہے الانبیاء, تو اس میں جو انبیاء کے قصے ہیں ان کی جو باتیں ہیں جن سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں. اور جیسے کہ اس سورت کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا موضوع کیا ہے, اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کیا جائے اس کا موضوع ہے توحید. تو توحید کو بڑی خوبصورت طریقے سے اس میں بتایا گیا اور انبیاء کے قصوں سے بھی بتایا گیا. کوئی بھی قصہ بیکار نہیں آیا قرآن میں, وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق دے کے جا رہا ہوتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں انبیاء کے ان قصوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اور البتہ تحقیق دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا. فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی, حق اور باطل میں فرق. کون سی چیز کرتی ہے, کون سی چیز ہے جس کو کہ ہماری شریعت میں بھی فرقان کہا گیا, وہ ہے قرآن. اسی طرح جو کتاب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پاس آئی اس کا نام بھی الفرقان ہے. اور وہ کون سی کتاب تھی؟ تورات. تورات کی بھی بڑی عظمت قرآن کریم میں بیان کی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ بھی لوگوں کو پہچان دیتی تھی حق کیا اور باطل کیا, برائی کیا اور بھلائی کیا, سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور فرقان اندر کی روشنی کے لیے بھی آتا ہے, کیونکہ آگے ضیاء کا لفظ بھی آیا ہے. ہم زود بولتے ہیں عربک میں, دود بولا جاتا ہے. وہ ضیاء ان اور روشنی, اسی کتاب کی خصوصیت دوسری کیا ہے؟ وہ روشنی ہے, روشن کرتی ہے, نور ہے لوگوں کے لیے. وہ ذکر للمتقین, اور ذکر ہے, ریمائنڈر ہے, نصیحت ہے, کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اچھا, اب یہاں پہ یہ تینوں صفات یاد رکھیے گا کہ تورات کی ہیں, کسی اور کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں کہوں کہ میں نے آپ کو جو تحفہ دیا وہ بڑا قیمتی ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور بہت اچھا ہے, تو یہ تینوں جو صفات ہیں یہ وہ اس تحفے کی ہی ہیں. ایسا نہیں کہ تین الگ الگ چیزیں ہیں کہ فرقان بھی ان کو دیا اور دیا بھی ان کو دی اور ذکر بھی ان کو دیا, تین کوئی ایک چیز کچھ اور ہے, ایک کچھ اور ہے, ایک کچھ اور ہے, ایسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے کہ تورات کی تختیاں دی گئی تھیں اور صحف بھی دیے گئے تھے, اور اس کے اندر ہر ایک انسان کے لیے ایک فرق پہچاننے کی چیز بھی تھی. اب یہ فرقان, لیکن جیسے قرآن کریم کو بھی فرقان کہا جاتا ہے, کیا کرتا ہے؟ آپ کو کچھ اس کے ذریعے کچھ فرقان ملا؟ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں حق اور باطل کی پہچان ہونے لگتی ہے. ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی مفتی نہیں رہ سکتا, کوئی ٹیچر نہیں رہ سکتا, کوئی ہر وقت آپ کو بتانے والا نہیں رہے گا. آپ جیسے جیسے اللہ کے کلام کو پڑھتے جاتے ہیں, یہ قرآن کی بھی فضیلت اور اس کی بھی خصوصیت ہے اور تورات کی بھی تھی, ویسے ویسے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے اندر ایک سمجھ لے میزان قائم ہو جاتا ہے. حق اور باطل کو آپ اپنے اندر ہی تولنے لگتے ہیں, آپ کو خود پتہ چلنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, ایک کرائٹیریا آپ کو مل جاتا ہے. اسی طرح دیا قرآن بھی کو بھی نور کہا گیا, اور یہ بھی جو تورات بھی تھی وہ بھی روشنی تھی. لیکن جب انسان چلنے لگتا ہے نا کسی راستے پہ, تو اس کو اندر کی بھی روشنی چاہیے ہوتی ہے اور باہر بھی روشنی چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی گاڑی ہے, تو آپ کی گاڑی اگر باہر روشنی بھی ہو, کہیں لائٹیں جلی بھی ہوں, تو جب تک آپ کی اپنی گاڑی کے اندر کی لائٹیں نہیں جل رہی ہوتی اس وقت تک آپ چل نہیں سکتے. اندر بھی چاہیے روشنی, باہر بھی روشنی چاہیے. تو یہ روشن کر دیتی ہے انسان کے ماحول کو بھی, اس کے ارد گرد کو بھی, اس کی زندگی کو بھی. یہ دیا بھی تھی, और ذکر اور ذکر نصیحت ریمائنڈر. مگر دیکھیں جو پہلی صفت ہے وہ ہے پراپر ناؤن آ رہی ہے الفرقان, اس کے بعد ادیا نہیں آئی, الذکر نہیں آئی, بلکہ وہ اسم نکرہ آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ الفرقان تو تورات سب کے لیے تھی, سب کے لیے, چاہے وہ اس پہ ایمان لائے یا نہیں لائے. لیکن دیا اور ذکر کس کے لیے؟ جو صرف متقی لوگوں, ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ روشنی کا کام بھی دیتی ہے اور ان کو ریمائنڈر دیتی ہے. کیسے متقین؟ متقین کون ہوتے ہیں جن کے لیے یہ ریمائنڈر بنتی ہے اور روشنی بنتی ہے, راہ دکھاتی ہے ان کو؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں متقین؟ ہمارے لیے بھی تو ہے نا, قرآن کریم شروع جب ہوتا ہے تو ہدن للمتقین آتا ہے, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو متقین کون ہے؟ اب اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی یہاں پہ کہ کون لوگ ہیں جو متقین ہیں. اور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی تک متقی بنے ہیں یا نہیں اس قرآن کے ذریعے, یا ہم ان میں سے ہیں جو اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں, اس سے رہنمائی لیں, تو وہ دو صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پہ متقین کی. نمبر ون, الذین یخشون ربهم بالغیب, وہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں. نمبر ٹو, وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ, اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. میں نے آپ کو یخشون کا کیا بتایا تھا, یعنی اوور ویلم ہو جاتے ہیں عظمت سے. کسی کی عظمت آپ کے دل میں آ جائے نا, تو اس سے جب دل مرعوب ہو جاتا ہے, دبنے لگتا ہے, وہ ہے خشیت. تو وہ کیسے لوگ ہیں متقی؟ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پہ. مطلب کیا؟ اس لیے کہ جب دنیا کے لوگ سامنے ہوتے ہیں پھر تو ہم سارے ڈر ڈر کے چلتے ہیں اور بڑے اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھے ترین اخلاق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اس وقت کیا حال ہوتا ہے جس وقت کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں غیب میں غائبانہ طور پہ, یعنی کوئی لوگ نہیں ہے دیکھنے والے, یا یہ کہہ لیں چلیں ہمیں اکیلے نہیں بھی ہوئے, ٹیچر نہیں ہے, کوئی گروپ انچارج نہیں ہے, کوئی ساتھ قرآن کے ساتھی نہیں ہے, بس گھر والے ہیں, بچے ہیں, ہسبینڈ ہیں. اب ان کے سامنے کیا اللہ کا ڈر رکھنا؟ ہمیں ان کو تو پتہ ہی ہے, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ. کیا وہاں پہ بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے ہمارے اندر؟ کیا وہاں پہ بھی ہم اللہ سے ڈر ڈر کے چلتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ بھی جو معاملہ کرنا ہے اس میں بھی مجھے اللہ سے ڈرنا ہے, میری ٹیچر مجھے نہ دیکھ رہی ہوں کوئی بات نہیں, ٹیچر کو پتا چل جائے گا اس کے اوپر تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے, فلاں کو پتا چل جائے تو اس پہ بہت فکر ہوتی ہے, کیا کہیں گے وہ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے. لیکن کیا اس کے بغیر صرف اللہ کے خوف سے ہمارا عمل درست رہتا ہے؟ وہ سب کام جو ہم گھروں میں کر رہے ہیں آج کل, جو ہمارے رویے ہیں, ہمارے اخلاق ہیں, ہمارے معاملات ہیں, چاہے شوہر کے ساتھ ہوں یا بچوں کے ساتھ, خود سوچیں. صرف اتنا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوچیں کہ یہ سارے معاملات کی فلم بنا کے پوری کلاس کو اگر دکھائی جائے تو کیا مجھے اچھا لگے گا, یا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی ایسا ہو. اس کا مطلب اگر کلاس کا ڈر ہے یا لوگوں کا ڈر ہے تو یہ اللہ سے ڈرنا تو نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ کلاس کے لوگوں سے اور جو آپ کے ٹیچر ہیں اور یہ ہیں ان سے بہت زیادہ بلند ہے, اس سے ڈر نہیں لگتا. کہ اس کا ڈر ہو جو بھی میں کر رہی ہوں اپنے گھر میں, مجھے اس کا ڈر ہو اور اس کے ڈر سے میں کروں, یا اس کے ڈر سے میں کسی چیز سے رک جاؤں, اس کا ڈر نہیں اور انسانوں کا ڈر. کیا ہم خوش ہوں گے اپنی یہ مووی بننے پہ, یا رونے لگیں گے کہ نہیں یہ کسی کو نہ دکھاؤ, کسی کو نہ پتا چلے کہ یہ میں ہوں؟ خود چیک کر لیں, ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ابھی تک, ہم متقی بنے ہیں کہ نہیں. کیونکہ متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے بھی وہی ہے اور گھر میں بھی وہی ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ اب لوگوں کے سامنے میرا یہ کردار اور اخلاق ہو اور گھر کے اندر میرے کردار اور اخلاق بالکل الٹ ہو, کہ گھر والے خدا کی پناہ چاہیں اور یہ سوچیں گے یہ قرآن پڑھ رہی ہے. यख्शाउना रब्बाहुम बिल गैब, ये बात बहुत ज्यादा हमारे लिए हमें जगा देने वाली है और हमें बहुत ज्यादा अपने किरदार को इसके आईने में चेक करना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा अखलाक लोगों के साथ कैसा है और अपने घर वालों के साथ कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्स्ट है अपने घर वालों के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड हमें कुछ बात कहते हैं तो हम आगे से कुरान की आयतें कोट कर कर करके बता देते हैं, ये मैंने पढ़ा वो मैंने पढ़ा, ये हदीस वो हदीस, और उनके मुंह पे मारते हैं हदीसें और आयतें, और आप अपने आप को क्या समझते हैं, मैं तो बड़ी चीज ही बन गई हूं। उसकी मूवी बना लिया करें और फिर सोचें कि ये मूवी सबको नजर आए तो कैसा हो। जो कुरान है ना, ये आईना है, ये फुरकान है। आपके अपने अंदर मुफ्ती बैठ जाता है जो आपको बता देता है कि ये गलत कर रही हो, और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ और ये एहसास ही नहीं जागा कि कहां कहां मैं गलत कर रही हूं, तो कुछ नहीं सीखा, फुरकान आया ही नहीं अभी। अगर किसी को बताने की जरूरत है कि यहां पे तुम गलत हो, तो क्या फुरकान आया है मेरे अंदर? क्या हम वाकई गैब में डरते हैं? बच्चों के साथ मामलात करते हुए डरते हैं, या इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि कोई बात नहीं है, जबकि ये भी हमारे इम्तिहान के पर्चे हैं। शौहर बहुत बड़ा पर्चा है इम्तिहान का। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो अल्लाह पे ईमान रखती हो, जो नमाज 5 वक्त की पढ़ती हो, जो सारे रोजे रखती हो और अपने शौहर की ताबेदार हो, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके शौहर उनसे नाराज हैं, जिनके शौहर के साथ उनकी बातचीत बंद है, जिनके घरों में झगड़े हैं, जिनके शौहर हर वक्त तंग रह रहे हैं उनसे। क्या अखलाक दिखा रहे हैं हम? हमारे अखलाक तो इतने बेहतरीन हो जाने चाहिए कुरान करीम सीखने के बाद कि वो खुद ये सोचें कि क्या पढ़ रही है, मैं भी पढ़ूं, इसके अंदर कितनी तब्दीली आई है जब से इसने कुरान पढ़ना शुरू किया। ना कि वो ये कहें कि जब से कुरान पढ़ने लगे या तो मुझे ही ताने देने लगी। याद रखें, अल्लाह ताला ने हमारे मार्क्स नहीं देखने के, टेस्टों में कितने नंबर आए हैं, कितने सिपारे हमने पढ़ लिए, कितनी दफा पढ़ लिया कुरान, कितने हमने याद कर लिए लफ्जी तर्जुमे, ये अल्लाह के हाँ टेस्ट नहीं है। ये तो जस्ट आपकी सिखाने के लिए एक आपका यहां पर टेस्ट लिया जाता है, इसकी कोई अहमियत नहीं है इन मार्क्स की अल्लाह के नजदीक। अल्लाह के नजदीक ये देखा जाएगा कि जब ये पढ़ा तो उसके बाद अमल में कितना आया, अखलाक व किरदार में कितना आया। कितने लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके किरदार से मुतासिर होके इस कुरान से जुड़ना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो इस कुरान के ऊपर ताना दे रहे हैं कि ये कुरान पढ़ा है तुमने। हम अपने अंदर झांके, ना किसी को बताने की जरूरत है, ना किसी से कहने की जरूरत है। बस ये सोच लें कितने कितने मार्क्स मैं ले रही हूं, लेकिन इन पर्चों में मेरे कितने मार्क्स हैं। हस्बैंड एक पर्चा है, उसमें कितने मार्क्स हैं? बच्चे एक पर्चा है, उसमें कितने मार्क्स हैं? ससुराल एक पर्चा है, उसमें कितने मार्क्स हैं? सब हमारे इम्तिहान है। कहीं ये तो नहीं कि हम उनमें फेल हैं और यहां हम बन बन के दिखा रहे हैं कि हम बड़ी चीज हो गए, हमने हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, हम फलां हो रहे हैं। कौन सी जगह पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितनी दफा ग्रेजुएट हुए, या आप अपने नंबरों की टेस्ट पेपरों की फाइल लेकर आ जाएं और दिखाएं? कहां पे पूछा जाएगा? हाँ, अखलाक के नंबर लगेंगे, वो सबसे वजनी होगा मीजान में। अगर हम जो टेस्ट हैं उन्हीं में फेल हो गए, जो हमारे असल टेस्ट हैं। आप सब मुझे बताइएगा कि आपके घरों के अंदर कितने काम हैं जो आपके हस्बैंड्स करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि घरों के कामों को उनको लगाया हो और आप बैठ के, जी मैं तो कुरान पढ़ रही हूं, घर की मुझे कोई परवाह नहीं है, और ये तो नहीं कि बच्चे मुसीबत में आ गए में कि क्या मुसीबत है, हमारी माँ जो कुरान पढ़ने शुरू की हर बार डंडा लेके हमारे पीछे पड़ी रहती है, वो आपसे भागते फिरते हो, क्या यही तरीके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे? उस वक्त जब कौम गुमराही में डूबी हुई थी तो उसको निकालने के यही तरीके थे, लोगों के पीछे डंडा लेके भागते फिरे। हम तो लोगों को मुतनफिर कर रहे हैं दीन से, दूर भगा रहे हैं, करीब नहीं ला रहे। तो यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, गैब में डरना सीखें अपने रब से। लोगों के सामने हम सब अच्छे हैं, सब, कोई भी नहीं बुरा, हर एक की तारीफें हैं जी, फलां बड़ा अच्छा, फलां बड़ा अच्छा। पता तो जब तब चले जब हमारे शौहर हमारे लिए गवाही दें कि ये बड़ी अच्छी है, हमारे बच्चे हमारे लिए गवाही दें कि हमारी माँ बड़ी शफीक है, बड़ी मेहरबान है, नरमी के साथ अल्लाह ताला जो खैर अता फरमाता है वो सख्ती के साथ नहीं फरमाता। फिर वह हम मिना साथ ही मुश्फिकून, और वो कयामत से डरने वाले हैं। कयामत के दिन से डरने की क्या जरूरत है भाई? डरे तो वो जो काफिर हैं, हम क्यों डरे? यहां पे तो कहा गया मुत्तकी डरते हैं, मुत्तकी कयामत के दिन से डरते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने क्या डरना है भाई, अल्लाह गफूर रहीम है, डरने की क्या जरूरत है? डरे हैं वो बुतपरस्त, डरे हैं फलां, डरे हैं, हम क्यों डरे भाई? हमें बस अल्लाह ने माफ कर देना, तो हमें डरने की क्या बात है? एक बात याद रखिए, अल्लाह गफूर रहीम है बेशक, उसका नाम अर्रहमान और अर्रहीम है बेशक, लेकिन फिर भी हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि वो माफ करे या ना करे ये उसकी मर्जी, और उस दिन रहम करता है हम पे या नहीं करता ये उसकी मर्जी है। हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि वो गफूर रहीम है इसलिए मुझे तो डरने की जरूरत ही नहीं, अब तो मैं बेबाक होके जो मर्जी करूं, अब तो मुझे कोई अमल करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो रहमान और रहीम है। इस चीज को हमने इतना ज्यादा यानी इससे धोखा खाया, मिस इंटरप्रेट किया या पता नहीं क्या समझा इसको, कि किसी के साथ मेरी बात हो रही थी, कोई शख्स फौत हो गया और वो बहुत शराब पीता था, तो उसके किसी अजीज से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या इसको कभी नहीं किसी ने रोका था कि शराब हराम है? उसने कहा कि नहीं रोका तो नहीं था, ये असल में बड़े बयान सुनता था फलाने पीर साहब के और फलां के और फलां के, और फिर उसके बाद कहता था देखा उसके अंदर बयान में तो ये आया कि शराबी को भी अल्लाह ने माफ कर दिया, तो इसलिए अल्लाह ने मुझे भी माफ कर देना, लिहाजा वो शराब पीता ही रहा। क्या अल्लाह ताला की मगफिरत का ये माना है? क्यों कुरान कहता है कि मुत्तकी तो वो, तो वो हैं जो अल्लाह से गैब में भी डरते हैं, वो फिर भी वो क्यामत के दिन से डरते रहते हैं, उनको तो सबसे ना डर होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो उलट है। और हम आज सारे डर खौफ छोड़ के रिलैक्स होके बैठ चुके हैं, भी फिक्र की बात ही क्या, कोई डर भी रहा हो तो कहते हैं क्यों फिक्र की बात, बस अल्लाह गफूर रहीम है, क्या तुम डरती रहती हो हर वक्त? नहीं, हम डर आने ही नहीं देते। डर का मतलब क्या है यहाँ पे? डर का मतलब ये नहीं कि आज आप मुंह बसोरी बैठी रहे और हस्बैंड भी घर आए तो आप कहें कि हाय आज तो हमारा दर्स ऐसा था, बस मैं तो डिप्रेशन में चली गई, वो कहेंगे अच्छा ये कुरान पढ़ रही है। डिप्रेस नहीं करता ये डर, क्या करता है? इंसान से अमल कराता है, इंसान की इसलाह कराता है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, क्योंकि वहां पे याद रखे कुरान में है कि वहां पे जन्नत भी है और जहन्नुम भी है, अल्लाह की मगफिरत भी है और उसका अजाब भी है। किस जगह पे लिखा हुआ है कि वहां पे अजाब कोई है ही नहीं, सिर्फ मगफिरत ही मगफिरत है, वहां पे जहन्नुम कोई है ही नहीं, सिर्फ जन्नत ही जन्नत है। किधर लिखा हुआ है ये, कभी मुझे भी पढ़ा दे। लेकिन ना डर होके तो हम ऐसे ही बैठे हुए जैसे वहां पे तो कोई जहन्नुम है ही नहीं, और अगर है भी तो हमें क्या भाई, हमारे लिए थोड़ा ही है वो, इसलिए हम डरते ही नहीं है। अगर कभी जहन्नुम का जिक्र आके आ जाए और हमारे आंसू भी निकल आए तो वो भी इसलिए होता है कि हाय बाकी काफिरों के लिए तो बड़ा सख्त अजाब है, आए, पढ़ के हम बड़े मुतासर थे, लेकिन कभी इस बात पे आंसू निकला कि अल्लाह कहीं अगर मैं इस जहन्नुम में चली गई तो क्या होगा? कहीं ये डर आया कभी? या हम वो जिंदगी गुजार रहे हैं कि 100% जिससे भी मैं मिलती हूं ना, 100% ऐसे लगता है कि इन्होंने लिखवाया हुआ है कि हम जन्नती हैं, 100%, चाहे उनका अमल कुछ भी है ना, कुछ भी। जिस जिस बंदे से मैं मिलूं वो ये समझता है मैं जन्नत में ही जाने वाला हूं, पॉसिबिलिटी नहीं जहन्नुम की, तो बिल्कुल रूल आउट है, पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसे लगता है जैसे जहन्नुम कोई है ही नहीं, वो तो बस इसलिए डरावे दिए मैं, वहां पे कुछ कुछ नहीं है ऐसे, और अगर होगी भी तो इन्हीं लोगों के लिए। बनी इसराइल भी यही कहा करते थे, लन तमस्सन अन्नारा इल्ला अय्याम मादूदात, कि हमारे आग तो अव्वल हमें छूनी नहीं, अगर छुएगी भी तो चंद दिन होगी बस, फिर हमने तो निकल के बाहर आ जाना। क्या वही हमारी भी सोच नहीं होगी? गारंटियां हम सब ने लिखवाई हुई है, इसीलिए तो डर की जरूरत ही नहीं। डरे वो हमारी बला से जिन्होंने कुछ ऐसे गलत काम किया, हमें डर की क्या जरूरत है? हमने अगर कुछ कर भी लिया तो कोई नहीं, अल्लाह है ना जो हमें माफ करेगा। बड़ी भूल में, बड़ी भूल में। अगर कुरान आंखें खोल के कभी पढ़ो तो पता चले कि जो मुत्तकी हैं वो कैसे कांपने वाले हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने से ही कांपते हैं। जहन्नुम की तो बाद में सवाल है, उनसे तो ये भी है कि अल्लाह हिसाब किताब लेगा तो क्या हाल होगा। हजरत उमर को देखें, फरमाते हैं उमर, उमर किसी और की, मैं आम बंदे की बात नहीं कर रही, जिनको तो गारंटियां मिल चुकी थी ना, वो फरमाते हैं अगर मेरा एक कदम जन्नत के अंदर हो और एक बाहर हो, अंदर एक है, हमारे जैसों का तो एक भी अंदर नहीं, फरमाते हैं अगर एक अंदर हो और एक बाहर हो तब भी मुझे ये डर होगा कि कहीं ये ना हो कि मैं जहन्नुम में चला जाऊं और जन्नत से महरूम हो जाऊं। फिर भी उसके बाद हमारे अंदर कोई डर खौफ नहीं, और अगर डर खौफ आता ही है तो वो ये है डिप्रेशन की सूरत में, फिर बिल्कुल बेकार हो जाते, नाकारा हो जाते। जो डरे हुए हैं तो वो डिप्रेस बैठे हुए, हमें टेंशन बहुत है, और दूसरे ये हैं कि जिनको कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बस उनके लिए एवरीथिंग इज गुड ओवर देयर, सेटल्ड है उनके लिए। किसने गारंटियां लिख दी? अब्दुर्रहमान बिन औफ है, सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े होने के खौफ से रोते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी हुई है उनको कि आपके लिए जन्नत है ही है, अशरा मुबशरा में से हैं, अशरा मुबशरा में से। फिर भी जब उनको पता चलता है कि मेरे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुर्रहमान तुम सबसे आखिर में मुझसे मिले जन्नत में, सबसे आखिर में यानी तुम मुझसे मिले, मेरे यानी सारे सहाबा में से, तो पूछा या रसूलल्लाह क्यों घबरा गए? फरमाया तेरे माल की कसरत ने तुझे रोके रखा, यानी माल का हिसाब देते 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 इतनी देर लग गई तुझे, क्योंकि मालदार बहुत थे। तो उनका काफिला आया हुआ था, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा काफिला था, इतना बड़ा काफिला था कि यानी अगर उसका पहला ऊंट मदीना के एक सिरे पे है तो दूसरा मदीना के बाहर है, इतना बड़ा काफिला था। समझ लें कि यानी आप कैसे समझेंगे कि यानी शिप्स आ जाएं हार्बर पे, जितने शिप्स खड़े हुए हैं, जितने शिप्स, शिप्स की लाइनों की लाइनें हैं, या गाड़ियां हैं जैसे रश आवर में होती हैं, जितनी गाड़ियां उनमें सब में सामान भरा, और जितने शिप्स हैं सब में सामान भरा, और वो एक आदमी के हैं सारे शिप्स जो सारे के सारे पहुंचे हैं। उस जमाने में ऊंट होते थे जो भरे हुए थे सामान से, लदे हुए थे। फरमाया सब के सब अल्लाह के रास्ते में मैंने दे दिए, कि इतना सख्त मेरा हिसाब किताब होगा, मुझे इतनी देर खड़े रहना पड़ेगा, हिसाब किताब के खौफ ने ही उनकी ये हालत कर दी। अभी तो जहन्नुम की बात ही नहीं आई, हालांकि पता है कि इस हिसाब किताब के बाद तो जन्नत में ही जाना है। तो हम की तरह फिर किस भूल में है? और क्यों यानी खौफे खुदा हमसे खत्म हो गया, क्यों नहीं हम डरते? बचेगा वही जो डरेगा, जो डर डर के ये जिंदगी गुजारेगा, और जो ना डर होके बैठ गया उसका बचना बड़ा मुश्किल है। ना डर कभी ना हो, हमेशा इस डर के साथ रहें कि अल्लाह, जाहिर है हमसे गलतियां तो एवरी डे हर लम्हे ही होती हैं, या अल्लाह ताला ये भी गलती हो गई, या अल्लाह ये भी गलती हो गई, अल्लाह तो अपनी रहमत से माफ कर देना, अल्लाह तो अपनी रहमत, हमेशा डर आपके अंदर रहना चाहिए, कभी खत्म ना होने दे। हाँ ये उम्मीद जरूर हो कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, उसके दर से कोई खाली नहीं जाता। वो माफ करने पे आए तो जमीन भर के गुनाह लेकर आ जाओ तो तब भी माफ कर सकता है, मगर ये उसकी मर्जी है, जिसको चाहिए माफ करे। तो डर अपने अंदर अगर नहीं है तो पैदा करें, और ये सब पढ़ के पैदा करें, जो कुरान आप पढ़ रहे हैं, जो सीरत आप पढ़ें, सहाबा कराम की जिंदगी आप पढ़ें, और इस डर के बाद अमल में इस्लाह करें, और इस चीज को देखें कि कहां कहां कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें मैं पीछे हूं, कौन कौन से मेरे इम्तिहान के पर्चे हैं जिनमें मैंने अपने आप को फिक्स करना है, और ये फिक्स ना हुए तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये मेरी गवाहियां हैं, मेरे घर में ही लोग मुझसे नाला हैं, नाराज हैं, बातचीत बंद हैं, मेरे रिश्तेदारों में ही ऐसे लोग हैं, मैं किधर अपने आप को सोच रही हूं कि हाँ जन्नतों के तो दरवाजे गेट मेरे लिए ही फरिश्ते खोल के खड़े हैं और इस्तकबाल करना चाहते हैं। अल्लाह करे ऐसा हो, मगर उसके लिए क्या उन हुक्मों को जो अल्लाह ताला के वाजे हुक्म है उनको आप सोचते हैं तोड़ के जन्नत में चले जाएंगे? कैसे फैसले करते हैं? तो ये आयत आई ओपनिंग है, सब अपने घरों में देखें, बाहर को छोड़ दें, हमने इस वक्त बाहर नहीं जाना, सिर्फ अपनी चार दीवारी के अंदर जो अफराद रहते हैं ना, दोस्तों को भी छोड़ दें, और दूसरे जो क्लास के और लोग हैं, किसको तबलीग करनी है, किसको कहना है, किसको बुलाना है कुरान की तरफ, उससे अच्छा अखलाक, सबको हमने छोड़ के अब ये पूरा वीक हमारा ये असाइनमेंट समझ लें, हमने अपने घर में चीजों को फिक्स करना है, इन ऑर्डर लाना है। क्या? क्योंकि जब हम मरेंगे, ये हैं जो मेरी गवाहियां हैं, इनको मैं तैयार करूं कि ये मेरे हक में गवाही दे कि हमने इसको पाया तो हमेशा अच्छा ही पाया। शौहर ये ना हो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करे कि ये मर गई तो मुसीबत जान छूटी, सर में दर्द थी, बल्कि जब भी शौहर हो या कोई भी हो, जब याद करें तो अच्छे अल्फाज में याद करें। तो दिस वीक असाइनमेंट, हमारे घर इनको हमने फिक्स करना, घर में जितने रिश्ते हैं, आपके घर में जो भी रह रहा है उनके साथ फिक्स करें। बहुत डिफिकल्ट है ये, लेकिन इट हैज टू बी डन। ये है प्रैक्टिकल, कुरान पढ़ा तो हमने है, उसके बाद रटना इसका प्रैक्टिकल नहीं है, तर्जुमे याद करना इसका प्रैक्टिकल नहीं है, इसका प्रैक्टिकल है इस वक्त अमल में लेकर आए। अच्छी बात कह दें किसी को, लेकिन एक ही बात आप अच्छे तरीके के साथ कह के दूसरे का दिन अच्छा कर सकते हैं, दूसरे का मूड अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी जगह दूसरे के दिल में बना सकते हैं, और वही बात आप बुरे तरीके से कह के और सारा उसका दिन भी खराब कर सकते हैं, और अपने लिए उसके दिल में नागवारी के जज्बात भी पैदा कर सकते हैं। एक बंदे ने एक बात आपको कही हो तो आप ये भी कह सकते हैं आगे से, मैंने तो तुम्हें ये पहले ही कहा था, तुम तो इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें तो बात पहली दफा में समझ ही नहीं आती। और दूसरी आप ये भी कह सकते हैं, ये तुम्हारी बात बहुत ही अच्छी है, वाकई इसी तरह होना चाहिए। दोनों बातों के अंदर आपने रजामंदी दे दी, लेकिन बात एक नेगेटिव तरीके से भी हो सकती, पॉजिटिव से भी हो सकती, हम किस तरह कर सकते हैं। हमने जब ये टास्क अपना बना लिया ना, हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने लिए अपने घर वालों के दिलों में, इस वक्त हम किसी और की नहीं बात करेंगे, अपने घर वालों के दिलों में जगह बनानी है। अपने घर वालों के नाम लिख लें एक जगह पे, हमारे उसने सलूक के सबसे ज्यादा हकदार ये हैं जो हमसे सबसे करीबी रिश्ते हैं, एक एक का देखें मैंने इसके साथ कैसा करना है कि मैं अपनी जगह इसके दिल में बनाऊं। एक नेचुरल, एक रिश्तों की मोहब्बत, वो अपनी जगह होती है, लेकिन कैसे मैं वो बनूं कि वाकई मेरे दुनिया से जाने के बाद जो मुझे याद करे यही कहे कि ऐसी बंदी, ऐसे अखलाक की मैंने नहीं कभी देखी। वहम मिन साती मुशफिकून, और ये इस वजह से हम करेंगे कि हम डरते हैं कयामत के उस दिन से कि जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होना होगा। ये हमारे तकवा का टेस्ट है, कितने हद तक हम मुत्तकी बने हैं इसका टेस्ट है। वहादा जिक्र मुबारक उन अनजलना हो, और ये है जिक्र जो बड़ा मुबारक है, हमने इसको नाजिल किया। जैसे हमने तौरात को नाजिल किया इसी तरह इस जिक्र को, इस जिक्र कौन सा, ये कुरान करीम, ये मुबारक जिक्र है जिसको हमने ही नाजिल किया। अब देखें कुरैश मक्का जो थे उनको भी एक उनके पर्सपेक्टिव में देखें इस बात को, उनको इस बात पे तो एतराज था नहीं कि यहूद के ऊपर तौरात उतरी, मगर उनको इस बात पे बड़ा एतराज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं ये खुद ही बना रहे हैं, ये तो शायरी है, ये तो ये है, ये तो कहानत है, ये तो जादू है, ये तो फलां है। उनके ऊपर तो तुम मानते हो कि वो किताब वाले हैं, जो यहूद हैं उनके पैगम्बर के ऊपर किताब उतरी, तो इस पैगम्बर पे क्यों नहीं उतर सकती, इस पे क्यों इतना इतराज है तुम्हें। तो ये तो जिक्र है जो बाबरकत है। बरकत क्या होती है? खैर कसीर। बरकत क्वांटिटी से नहीं होती कि कितनी क्वांटिटी है, बरकत थोड़ी चीज में भी बरकत होना क्या होता है, यानी इसमें बहुत सारी खैर निकल आई। थोड़ा सा खाना होता है वो बहुत सारे लोग खा लेते हैं, आप कहते हैं इसमें बड़ी बरकत हो गई, यानी थोड़ी चीज थी लेकिन उसकी खैर कितनी ज्यादा फैल गई ना। $100 होते हैं आपके पास और आप कहते हैं इस $100 में ए अगर बरकत होती है तो क्या होता है, इतने सारे आपके काम बन जाते हैं। और अगर बरकत उठ जाए तो क्या होता है, आप कहते हैं हाई पैसों का पता ही नहीं चला, पता नहीं कहाँ उड़ गए, इसलिए कि उसमें बरकत नहीं थी। बरकत ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टच करके देख सके, आंखों से नजर आए, बरकत आप महसूस कर सकते हैं। इसी तरह वक्त में बरकत होती है, माल में बरकत होती है, जिंदगियों में बाज लोगों की बरकत होती है कि वो 40-50 साल की जिंदगी भी गुजारते इतनी खैर कमा लेते हैं कि जो लोग 100-100 साल जिंदा रह के भी नहीं कमाते। तो ये क्या है बरकत, इस बरकत को फरमाया कि ये इस कुरान में है। क्या मतलब हुआ, यानी इसके जरिए इतनी खैर मिलती है लोगों को, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सीखेगा, जो इसको समझेगा, जो इसको हिफ्ज करेगा, जो इस पे अमल करेगा, जिंदगी में बरकत ही बरकत आ जाएगी, खैर ही खैर आ जाएगी, खैर खैर कसीर आ जाएगी। आपकी उसी दिन के अंदर इतनी बरकत हो जाएगी कि आपके कितने ही सारे काम हो जाए, इसलिए कि आपकी जिंदगी में क्या आ गया, ये जिक्र आ गया। आपके कितने सारे मसले हैं जो अल्लाह ताला कैसे हल फरमा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्यों, इसलिए कि आपकी जिंदगी में मुबारक जिक्र आ गया, बरकत वाली चीज आ गई। आप घर में ना तिलावत चलाते हैं, क्यों, बरकत हो जाएगी घर में। देखें तिलावत चलाने से अगर बरकत हो जाएगी, सोचें कि आपके पढ़ने से, सीखने से, उसको अमल करने से कितनी बरकत होगी। फिर इतनी बरकत वाली चीज और हमने उठा के ऊपर रखी हुई है कि हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कितने ही घरों में ये किताब है और जिससे उनके सारे घर में खैर ही खैर आ सकती है वो ही बंद करके रख दी। ये मुबारक है किताब, तो इसको भी हमने ही नाजिल किया है। अफ अंतुम लहू मुनकिरून, क्या फिर भी तुम इसका इनकार करते हो? और इनकार करना सिर्फ ये नहीं है कि हम नहीं मानते कि अल्लाह की तरफ से, इनकार ये भी है कि जब आप अल्लाह का कोई हुक्म इस किताब में पढ़ते हैं और कहें मैं नहीं मानती, ये तो नहीं सही, ये तो नहीं लॉजिकल, ये फिर क्या बात हुई, ये कैसे आज हो सकता है। अब ये तो देखें आज हो ही नहीं सकता, कैसे आप सोचती कैसे होगा, ये भी उसका इनकार करना है। इसके हुक्मों का इनकार भी कुरान का इनकार है, इसको समझना कि ये एप्लीकेबल ही नहीं है ये भी इसका इनकार है। इनकार तो कई तरीकों से होता है, इसकी बातों को समझना कि ये तो पुराने जमाने की बातें हैं और ये आज की नहीं है या आज के जमाने के लिए नहीं है, ये भी इसका इनकार है। और इसको कुछ अहमियत ना देना और ये समझना कि ये पढ़ने के काबिल ही नहीं है, ये भी तो इसका इनकार है। इनकार के तो बहुत सारे तरीके हैं। जब पता चलता है किसी चीज से हमें खैर मिलनी हो तो लोग तो भाग भाग के लेते हैं, पैसे दे के भी उसको लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यकीन ही नहीं है कि इसके जरिए कोई बरकत मिल सकती है या ये कोई बरकत के काबिल चीज है, इसीलिए मुफ्त भी दिया जाए तो नहीं आते। इतनी बरकत वाली किताब अगर वाकई मुझे यकीन है तो खुद सोच लें फिर मैं इसको कितना टाइम देती हूं, हाँ कितना टाइम देती हूं इसको, अरे मुझे वाकई यकीन है कि ये बरकत वाली चीज है। वलकद आतैना इब्राहिम रुश्दहू, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने रुश्द दी थी, मिन कबलू, इससे पहले ही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यहां से किस्सा स्टार्ट होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुश्द अल्लाह ताला ने अता फरमाया। रुश्द भी हिदायत ही है, लेकिन रुश्द और हिदायत में थोड़ा सा फर्क है। हिदायत तो है रास्ता दिखाना, और रुश्द इससे भी आगे है कि रास्ता ना सिर्फ देख लेना बल्कि उस रास्ते पे चल भी पड़ना, उस पे जमे भी रहना और आंखें बंद करके चलते चले जाना। अब इतना यकीन है इस रास्ते पर और इतनी अच्छी तरह समझ आई भी है रास्ते की, जैसे आप एक मसलन है कि आप जीपीएस लगा के और किसी जगह पहुंचते हैं, और एक आपका मसलन जैसे आपका रोज का एक रूट होता है, आपका इतना जाना पहचाना वो रास्ता होता है कि आप घर से गाड़ी स्टार्ट करती हैं, मसलन आपका ऑफिस है या आपकी कोई और रोज जाने की जगह है, तो आपको पता ही नहीं चलता आप कब वहां पे पहुंच भी गई, आपने सोचा भी नहीं और चलती चली गई, ये है रुश्द। और जो जीपीएस के जरिए चलना वो है हिदायत। यानी रुश्द क्या है, इतना क्लियर होना किसी रास्ते का, इतना आपको उसके ऊपर यकीन होना और यानी बगैर सोचे समझे आप उसके ऊपर चलते चले जाते हैं, इतने आप उसके पर जमे होते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रुश्द दी थी, और ये भी मिन कबलू, इससे पहले, किससे पहले, यानी नबुवत से भी पहले, जब अभी नबुवत भी नहीं मिली थी, जब अभी बच्चे थे तब भी उनको बुराई भलाई की पहचान थी, तब भी उनको सीधे रास्ते का पता था। ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी शिर्क किया और ना ही किसी नबी ने कभी शिर्क किया। नबुवत तो उनको जाहिर बड़े होके जवान होके इस तरह सारे नबियों को मिली, लेकिन ये नहीं था कि उससे पहले वो कुछ भी करते फिरते हो, हालांकि पूरा इलाका शिर्क में डूबा हुआ था, इसके बावजूद एक लड़के का शिर्क से बचे रहना बचपन से कितनी बड़ी बात है। वो क्या क्या वजह है, रुश्द थी उनके अंदर, समझ बूझ थी, उनको पता था उनके कि ये सही नहीं है। और आप देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी सारी जिंदगी शिर्क नहीं किया, इवन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी सारी जिंदगी नहीं शिर्क किया। तो सलीम फितरत जो होते हैं अल्लाह की तरफ से इनको प्रोटेक्शन होती है, अल्लाह की तरफ से इनको समझ बूझ रुश्द हिदायत मिली होती है यानी बचपन से। इस कॉल अली अभी ही, अब देखें यहां पे हम वो किस्सा पढ़ने लग रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ का जो उनकी बिल्कुल यानी जैसे इसराइली रिवायात में है, वल्लाहु आलम कितनी ट्रू है, क्योंकि इसराइली रिवायात पे आप मतलब कोट कर सकते हैं लेकिन डेफिनेटली नहीं कह सकते कि सही है, कितनी हद तक सही है कि इसराइली रिवायात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त टीनेजर थे। तो हम जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ देखते हैं ना तो हम इसके कई फेजेस देखते हैं। हमने ये फेज भी देखा कि जिस जो सूरह अनाम में आया कि जिसमें सितारों को देखा, सूरज को देखा, इसको देखा, फिर हम यहां पे भी देख रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकालमा अपने बाप के साथ और अपनी कौम के साथ। फिर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये भी देखते हैं कि जब उनका बेटा इसहाक पैदा हुआ, फिर जब उनका बेटा इस्माइल पैदा हुआ, फिर हम उनकी जिंदगी के ये भी टेस्ट्स देखते हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी मेंशन फरमाया है कि अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से टेस्ट कर लिया और हर टेस्ट में वो पूरे उतरे कि बुढ़ापे में उनको जो अल्लाह ताला ने टेस्ट किया जब बेटे और बीवी को छोड़ के आना था इतनी दूर, फिर और ज्यादा बुढ़ापे में थे जिस वक्त के जिबा करने का हुक्म दिया, फिर काबा की तामीर उनसे कराई, फिर यानी अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार टेस्ट्स में डाला और सख्त तरीन हालात में भी उनको टेस्ट किया, लेकिन हर जगह उनको साबित कदम पाया। और इसी बात को फरमाया वकुन्ना बिही आलिमीन, सॉरी ये बात रह गई थी पीछे, वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम जानने वाले थे उसको, यानी हमें पता है कि इब्राहिम कितना लायक है, हमें पता है कि वो किस मनसब के काबिल है। यानी ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला किसी को भी नबुवत दे दें, किसी को भी अपना खलील बना ले। अल्लाह को पता था पहले ही कि मैं जो जिन इम्तिहानों में इसको डाल रहा हूँ और जिन हालात में इसको डाल रहा हूँ, इब्राहिम उनमें सब में पूरे उतरेंगे। अल्लाह ताला को अच्छी तरह पता था हमने किसको कहाँ पे डालना है, किसको कौन सी कौन सा यानी दर्जा देना है, कौन किस पाए का इंसान है। अल्लाह ताला को बहुत अच्छी तरह मालूम था। और फिर अब जो ये किस्सा आ रहा है, फिर अब ये उनका अपनी कौम के साथ और अपने बाप के साथ मुकालमा, यानी उनकी जवानी की ये जो फेज है लाइफ का, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। और भी जगहों पे आपने दूसरे पढ़े हैं ना, तो अब ये वाला हम इंशाल्लाह आज देखते हैं क्या था। इज क़ाल अली अभी ही, जब कहा उसने अपने बाप से, वह कौमी ही और अपनी कौम से। अब यहां पर देखें, बाप का जिक्र पहले आया, कौम का बाद में, इसलिए कि सबसे पहले अपने जो करीबी हैं उनको नसीहत करना, उनकी इसलाह करना, उनको दावत देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने कबीले को, अपने खानदान को जमा करके फिर उनको दावत दी थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सबसे पहले अपने बाप को दावत दी और अपनी कौम को फिर दावत दी। कौम भी यानी जिस कौम से वो बिलोंग करते थे, एक तो ये वो कौम तो बुतपरस्त थी ही, बाप जो थे वो ना सिर्फ बुतपरस्त था बल्कि बुतगर था, बुत बनाता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी दावत दी और अपनी कौम को भी, और उनसे कहा मा हाजिह तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, क्या है ये मूर्तें, क्या है ये जो बुत जिनके तुम आगे जम के बैठे हुए हो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं उनको कहा कि क्या है ये इलाह जो जिनके तुम आगे इबादत कर रहे हो, बल्कि ये क्या मूर्तें हैं जिनको तुम पूजने लगे हुए हो। ये भी देखे ना, उनकी रुश्द है। अच्छा, हमें सबसे मुश्किल किसको दावत देना लगता है? लोगों को दावत देना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन जब अपने खानदान को देते हैं, और उसमें भी जब अपने माँ बाप को कोई बात समझानी होती है, तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं ये तो हमारा बच्चा है, अब हमें क्यों बात कह रहा है या कुछ है। और उसके अंदर फिर एक एहतराम, एक इज्जत का भी पहलू होता है कि वो भी हाथ से ना जाए। इंसान ऐसे उनके साथ नहीं बात कर सकता जैसे कि अपने बच्चे के साथ बात करेगा। तो आप ये देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब बाप का मकाम भी है, एक बाप का एक दर्जा है, और उसमें बाप वो बाप है, आम एक बंदा नहीं है, वो बाप है जिसका बिजनेस ही समझ लें या जिसकी जॉब ही समझ लें बुतों को बनाना है और उनको बेचना है। और कौम तो हमेशा से जो बुतपरस्ती में लगी, तो उनको कहा कि ये क्या चीजें हैं, क्या बुत हैं ये जिनके आगे तुम जम के बैठे हुए, इसलिए कि वो उनके मजावर थे, उनके आगे जम के बैठते, जिससे आज आप देखते हैं कि कब्रों के आगे लोग किस तरह से बैठते हैं और उनके मजावर बन जाते हैं और फिर बस उन्हीं की खिदमत, इस तरह वो लोग लगे रहते थे। तो तुम क्यों ये काम कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। अब आप सोच सकते हैं कि इब्राहिम टीनेजर हैं और उन्होंने आंख खोली है कैसे माहौल के अंदर, जिसमें हर तरफ शिर्क का अंधेरा है, उसमें भी एक शख्स कितना सालिह है, इतना सलीमुल फितरत है कि इंसान हैरान होता है। वरना हम सोचते हैं ना ऐसे माहौल में तो ऐसा ही होगा, तो जिसकी अल्लाह ताला ने हिफाजत करनी हो, तो कैसे अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस माहौल में रख के भी बचाते हैं। अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी शिर्क और कुफर और जो भी आज के फितने इनमें रहते हुए भी बचा के रखे। तो वो फिर ये जब उनसे सवाल करते हैं तो वो आगे से जवाब क्या देते हैं, अब बजाय इसके को कोई दलील लेकर आए, कहते हैं कालू वजदना अबाना लहा आबिदीन, उन्होंने कहा कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह इनके आगे इबादत करने वाले पाया है। आप हमेशा देखिएगा जो जो भी ये शिर्क होता है ना, शिर्क इवन बिदात भी, بدعتیں ہیں، شرک ہیں، اس طرح کے خرافات ہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی لوگوں کے پاس۔ جب ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کرتے، نہیں جی ہمارے تو خاندان میں ایسے ہوتا تھا، ہمارے تو باپ دادا سے یہ چلا رہا ہے، ہمارے تو امام نے یہ کہا ہے۔ بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ کے باپ دادا سے یہ آ رہا ہے یا آپ کے امام نے کہا ہے۔ دلیل کیا ہوتی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، ہاتھو برہانہ کو، دلیل لے کر آؤ۔ دلیل یا تو کتاب سے ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئی، یا پیغمبر کے فرمان سے ہوگی، بس، اور یہ کوئی دلیلیں نہیں ہیں۔ اور ہر نبی کی قوم نے یہی جواب دیا جب ان کے نبیوں نے ان کو دعوت دی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس کے اوپر پایا، اور آج تک یہی ایکسکیوز چلا آ رہا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، پھر فرمایا اگر ایسی بات ہے نا کہ تمہارے باپ دادا کو تم نے اسی طرح عبادت کرنے والا پایا، تو پھر تو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سب ہی ڈوبے ہوئے ہیں کھلی گمراہی میں۔ فی کیا ہوتا ہے، جب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، فی اندر، انسائڈ کسی چیز کے، یعنی اتنے ڈوب چکے ہو، غرق ہو چکے ہو اندر ہو اس کے، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی۔ آج اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے کسی کو تو کہیں گے ہائے ہمارے باپ دادا کی گستاخی کر دی، ان کو ایسا کہہ دیا، اور تمہیں زیادہ پتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کو زیادہ پتا ہے۔ اب وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہوتی، اب اس کو پروف کون کرے کہ تمہیں زیادہ پتا ہے کہ تمہارے باپ ہمارے باپ دادا کو زیادہ، تم آج کے بچے اٹھ کے یہ بات کہنے لگے، تم ہمارے باپ دادا کو کہہ رہے کہ وہ غلط کرتے تھے، یہ تو کتنی بری بات، یہ تو کتنی تم نے ان کی بے عزتی کر دی، یہ تو تم نے گستاخی کر دی، یہ تو تم نے ایسے کر دیا۔ حالانکہ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو جو بھی دلیل کے بغیر بات ہوگی، دیکھیں آنکھیں بند کر کے اپنا عقیدہ کسی چیز پہ نہیں آپ رکھ سکتے، بات وہی مانی جائے گی جس کے اندر دلیل ہے، بس۔ آج بہت ساری چیزوں میں ہمارے پیروں نے یہ کہا، ہمارے اماموں نے یہ کہا، ہمارے فلاں نے یہ کہا، بس اس کو کہتے ہیں وہ لاسٹ ورڈ ہے، اس کے بعد چاہے آپ ان کو سامنے قرآن رکھ دیں، حدیث رکھ دیں، کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں، ہم نے تو یہ بھی نہیں ماننا، بھئی ہمارے امام نے یہ کہہ دیا، تو کیا یہ بات مانی جائے گی؟ نہیں، امام بیچارے تو خود دنیا میں اپنی زندگی میں یہ کہہ کے گئے کہ ہماری بات کے آگے حدیث آ جائے، صحیح حدیث آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارنا، اس کے باوجود نہیں ماننا۔ ہاں وہ اتنی سی بات سوچ لیں، رفع یدین کرنے کی، یعنی نماز میں رفع یدین کرنا، امام ابو حنیفہ نے صرف، ان کا صرف موقف تھا نہ کرنے کا، باقی تمام ائمہ کرام، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، سب نے رفع یدین کیا، اور اس میں ان کے ساتھ ان کا یہ یعنی اختلاف تھا۔ اور بعد میں امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں، وہ خود جب مدینہ آتے ہیں اور وہاں پہ ان کو صحیح حدیث ملتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جدھر وہ رہتے تھے کوفہ کی طرف، ادھر کو نہیں ان کو اتنی حدیث ان تک پہنچی تھی، جب مدینہ آئے ان کو صحیح حدیث ملی، تو انہوں نے یہ فرمایا باقاعدہ کہ اگر امام صاحب بھی زندہ ہوتے تو وہ اس حدیث کو ہی لیتے، اس کے باوجود صحیح حدیث سامنے ہے، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم کریں گے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے امام نے نہیں کیا، ہمارے امام نے نہیں کہا۔ امام کی اصل پیروی تو یہ ہے کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، تو تم تو اپنے امام کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ حدیث تمہارے سامنے آئی تم نے مانی نہیں۔ تو یہ ڈراؤن ہو چکے ہیں گمراہی کے اندر، جب لوگ اتنے ریجڈ ہو جائیں کہ قرآن اور حدیث کی دلیل بھی نہ سنیں، تو پھر کیا بات ہے، پھر اور اس سے زیادہ کیا رہ گیا۔ تو وہ لوگ بھی بس اپنے آبا و اجداد، بس ہمارے آبا و اجداد نے کہہ دیا، تو بس اب حرف آخر ہے یہ۔ قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، آگے سے کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس حق لے کے آئے یا تو ہم سے مذاق کرنے لگا ہوا اے ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی سیریسلی تم یہ بات کہہ رہے ہو، یا یوں ہی ہم سے کھیل جو ہوتا ہے وہ تو نان سیریس چیز ہوتی نا، کہ ایسے ہی ہم سے مذاق کی بات کر رہے ہو، آر یو سیریس؟ نہیں، وہ سوچے تھے یہاں یہ حیران ہو گئے کہ ہمارے، ہم نے تو ایسی باتیں کبھی سنی ہی نہیں ہیں، ہمارے تو جدی پشتی سب اسی طرح انہیں بتوں کو پوجا کرتے رہے، کہ نئی انوکھی باتیں کر رہے، آر یو سیریس؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض، رب تو تمہارا وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا، جو ان کو سب سے پہلی دفعہ تخلیق کرنے والا تھا، وہ ہے تمہارا رب. وہ تمہارا رب کون ہوتا ہے؟ مالک، خالق، انسان کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کو پالنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی مینٹیننس، اس کی سسٹیننس، سب اس جس کے ہاتھ میں، وہ ہے رب، جو پرورش کرنے والا. تو وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ہے تمہارا رب. یہ تھوڑی ہے رب. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پہ گواہوں میں سے ہوں. شاہد کون ہوتا ہے؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہی اسی چیز کی دی جاتی ہے جس کی انسان کو پوری خبر ہو، علم ہو، معرفت ہو. لا علمی میں تو گواہی نہیں ہوتی نا، کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن میں گواہی دے رہی ہوں، ایسے نہیں ہوتا. جس چیز کا انسان علم لے لیتا ہے اسی کی شہادت دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں گواہوں میں سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا کہ ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں، ادھر میرے دماغ میں ایک بات آ گئی اور میں نے کرنی شروع کر دی. پورا میں پورے علم کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں. اس کا مجھے پورا ادراک ہے، پوری سمجھ ہے، پوری بصیرت ہے. ایسے ہی بس دعوت دینے نہیں بیٹھ گیا تمہیں. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے جب آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہو، علم کے بغیر کبھی نہ دیں. پوری آپ کو خود یقین ہو اس بات کے اوپر، آپ خود شاہد ہوں اس کے اوپر، آپ کو پوری معرفت ہو، اس کی ڈیپ تک کو جانتے ہیں. کیونکہ اس کے بغیر جب آپ دعوت کا کام کرنے لگیں تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. کہ اللہ معاف کرے، انسان کے اپنے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو جب ہم ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ دیکھتے ہیں تو ہم اس سے کیا سیکھیں گے کہ ہم بھی جب ہمارے پاس علم ہو، دلائل ہو، یقین ہو، معرفت ہو، تب توحید کی دعوت دیں. پھر فرمایا وَتَاللَّهِ، اور قسم اللہ کی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات جو یہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ انہوں نے علل اعلان بات کی تھی. بعض کہتے ہیں نہیں، دل میں ہی انہوں نے بات کی تھی، اپنے ہی دل کے اندر یہ بات کی تھی، ان کو مطلب رائٹ اوے نہیں کہا تھا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قسم اللہ کی میں البتہ ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں سے. کس وقت؟ بعد اس کے کہ ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹھ پھیر کے جاؤ گے. وہ چونکہ ایک میلے پہ جا رہے تھے تو ان کو، یعنی اگر ہم کہیں گے دل میں بات کی پھر تو ٹھیک ہے، ظاہرہ انہوں نے سنی ہی نہیں، لیکن اگر انہوں نے ان کے سامنے بات کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سننے والوں نے کوئی ریئیکشن کیوں نہیں کیا، کوئی وہ الارم کیوں نہیں ہو گئے، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم کہ ہم کچھ آج لاک لگا کے جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ کچھ اور ہی کر دے ہمارے بتوں کے ساتھ. کیوں نہیں ایسے انہوں نے کیا؟ نمبر ون، اس لیے کہ پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام ان کو منع کرتے رہتے تھے تو ان کو پتا تھا یہ روز کی اس کی باتیں ہیں، چھوڑو یہ تو ایسے ہی. نمبر ٹو، وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے زیادہ سیریس لیتے ہی نہیں تھے، بچہ سا ہے بس ایسے ہی باتیں کرتا رہے جوانی کے نشے میں، اس کو کون سی سمجھ ہے، چھوڑو اس کو، ایسے ہی یہ باتیں اس کی، تو یہ ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف دل میں اگر کہی ہے تو پھر تو یعنی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ظاہر ہے کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات پہلے کہی، اس کا مطلب ہے لَأَقِيدَنَّ ہے کہ مطلب پلاٹ کروں گا، پلان کروں گا. اس کا مطلب جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو تدبیر کے ساتھ چلنا چاہیے، ایسے ہی نہیں ہیپ ہیزرڈ. اور یہ وہ کام تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی نہیں کیا تھا، اس کے بھی پیچھے کوئی وجہ تھی جو انہوں نے کیا تھا، اور وہ کیا اس سے کروانا چاہتے تھے وہ ہم اسی سٹوری میں انشاءاللہ دیکھیں گے. فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو اس نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے سوائے ان کے بڑے کے. ان کے کن کے؟ ہم کی ضمیر کس طرح جاری؟ اسنام کے. اسنام میں سے جو بڑا تھا صرف اس کو نہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، باقی سب کو. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں. کس کی طرف؟ ہی کی ضمیر کس طرف جاری؟ نمبر ون، بڑے بت کی طرف، کہ تاکہ وہ بڑے بت کی طرف لوٹیں کہ یہی ہے جو کہ کھڑا ہوا ہے، باقی تو سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو اس نے کیا یہ کام کیا. نمبر ٹو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ الیہ یرجعون، کہ وہ इसकी तरफ पलटें, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, कि आके पूछें कि तुमने कहा था ना कि मैं बुतों के साथ तुम्हारे कोई चाल चलूंगा, तो ये तुमने क्या किया। और फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको फिर उस वक्त, आज तक तो इतनी इनकी बात को सीरियस नहीं लेते थे, फिर उस वक्त तबलीग करेंगे। नंबर थ्री, इलेही ही की जमीर किस तरफ जा रही, ही अल्लाह की तरफ इशारा, उसकी तरफ पलटे। यानी इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये किया ताकि वो सोचें और शायद यही जरिया बन जाए कि वो अल्लाह की तरफ पलट जाएं। समझ आई बात। तीनों जमीर एक है लेकिन इससे तीनों माने निकलते हैं। कालू, उन्होंने कहा, अब आपस में वो आए हैं वापस मेले से और उन्होंने आके ये देखा कि हमारे बुतों का तो हाल बुरा हुआ पड़ा है, टुकड़े टुकड़े हुए पड़े। उन्होंने कहा मन फाला हादा भी आली हातीना, किसने ये किया है हमारे आलिहा के साथ। ये नहीं कहा कि किसने इनको तोड़ के जुजाजा बिल्कुल टुकड़े टुकड़े किया हुआ, ऐसे नहीं। इसलिए कि वो अगर ये बात कहते तो वो ये इटसेल्फ बात कितनी यानी एम्बेरेसिंग थी और कितनी यानी एक बेइज्जती की बात थी उनके लिए, जिनको इला कह रहे हैं वो हमारे ऐसे पड़े में। तो फाला हाजा, ये काम किया हमारे आलिहा के साथ। और फिर पहले तो एकदम कंफ्यूज है ना, फिर कह रहे इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, वो तो बिल्कुल जालिमों में से, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो जालिमों में से है जिसने हमारे आलिहा के साथ ये काम किया। यानी सोचे इंतहा बेअकली की कि जुल्म इस चीज को कह रहे हैं कि किसने इनको तोड़ा है। और ये जुल्म नहीं है जो तुम कर रहे हो शिर्क करके। यही बात होती है ना कि जब इंसान की अकल मारी जाए ना तो उसको अपना बड़े से बड़ा जुल्म, अपनी बड़ी से बड़ी बात नजर ही नहीं आती, अपनी बुराई उसको दूसरे की जरा सी भी बात इतनी बड़ी नजर आती है, मगर अपना गुना वो तो उसकी उसको पता ही नहीं होता मैंने किया भी है कि नहीं, कुछ नजर नहीं आता। तो इनको अपना शिर्क नहीं नजर आ रहा, इनको ये नजर आ रहा है कि देखो ये कितना जुल्म है हमारे इलाहों के साथ, इस तरह इनको तोड़ना। और ये तो यानी मुस्लिम में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा था बाद में जब मक्का फतह वगैरह हो गया हुआ था, और हुक्म दिया था कि जो कब्र भी तुम्हें बुलंद नजर आए उसको ढा दो, फ्लैट कर दो उसको, और जो तस्वीर नजर आए उसको मिटा देना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। और जो मुजस्मा नजर आए बुत वगैरह तोड़ देना उनको। तो ये नबियों वाला काम है, शिर्क के आसार भी मिटा दिए हमने। अब ये मतलब नहीं है कि कोई अब उठ के चल पड़े कि चलो हम अब मंदिरों में जाके तो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को पहले दिन नहीं तोड़ दिया था। इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता कि लोगों के इबादत खानों में जाके और उनके इबादत की चीजों को जाके तोड़ा फोड़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कितना वक्त लगाया और उसके बाद ये हुक्म दिया था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कितना वक्त लगाया था ये भी हम आगे देख लेते हैं। कालू समैना फतही यज़कुरुहुम, हमने तो सुना है, उन्होंने कहा आपस में, अभी ये आपस की उनकी बातचीत चल रही, कह रहे हमने सुना था एक आदमी, एक लड़के को, एक लड़का जो था इनका जिक्र किया करता था। यू कालू लहू इब्राहिम, उसका कहते हैं इब्राहिम, उसको इब्राहिम कहलाता है वो। यानी यहां पे ये बात हमें पता चलती है, नंबर वन कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग, उनकी दावत लोगों तक पहुंच चुकी थी, बहुत वेल नोन थे वो, इसीलिए तो कहते हैं, वरना किसी और का क्यों नहीं कह दिया उन्होंने। फौरन उनका ध्यान इस तरफ को गया कि हमने तो एक लड़के को सुना, और ये भी नहीं कहा कि हमने इब्राहिम को सुना था, हालांकि बड़ी अच्छी तरह जानते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई भी अहमियत नहीं दी गई। यहां पे इस जुमले से उनके पता चलता है कि वो जो लड़का है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, इब्राहिम इब्राहिम कहलाता है वो, हालांकि जानते हैं पहले ही कह सकते थे कि समय है ना इब्राहिम, कि हमने इब्राहिम को सुना था कोई बात करते हुए, इसका जिक्र करते हुए, वो एक लड़का होता है इब्राहिम इब्राहिम कहलाता है वो है। इससे हमें अंदाजा होता है कि वो ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को कुछ अहमियत देते थे और ना उनको। और एक और बात पता चलती है यहां पे कि जब वो ये कह रहे हैं ना कि हमने एक लड़के को सुना हुआ जो इनका जिक्र कर रहा था, तो इससे पता चलता है कि ये पहला दिन नहीं था कि एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो के उठे और उन्होंने जाके बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि काफी अरसे से वो दावत का काम करते थे, तभी उनके जहनों में था कि एक जवान है जो ये कहता है, ठीक है, फौरन उनका ध्यान तभी गया। अच्छा फिर देखें यहां पे यज़कुरुहुम बिसूए नहीं कहा कि उनका जिक्र करता है बुराई के साथ, इसलिए क्योंकि इतनी उनको ताजीम थी इन बुतों की, इतनी उनको इनकी अकीदत थी कि ये वर्ड भी कहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इनके साथ में हम ऐसी कोई बात बोले कि इनका बुरा जिक्र करता था, बस जिक्र करता था, नहीं इतना उनको समझते थे। जैसे आज हमारे यहां भी कई कब्रों के और उनके इसको इतना इस तरह समझते हैं कि अगर उनको कहा जाए ना, नहीं यहाँ पे सज्दे ना करो, यहाँ पे मत दुआएं मांगो, यहाँ पे हाय ऐसी बात ना करें, वो आपको कुछ कुछ पहुंचा देंगे, कोई नुकसान हो जाएगा, फिर तो आपने बचना नहीं है, फिर तो ऐसा हो जाएगा। ओ भाई क्या कह दिया, भाई उनके बारे में ऐसी है, उनकी तौहीन हो जाएगी, ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है कि कहा जाए कि एक अल्लाह से मांगो, कहा जाए कि एक अल्लाह को सजदा करो, क्या ये कहना गुस्ताखी है कि इनको ना सजदा करो। अरे देखें जब अकल मारी जाती है तो फिर इंसान का हाल क्या हो जाता। अच्छा फिर कालू उन्होंने कहा, अब ये बात आपस में कह रहे हैं, फातू भी ही लेकर आओ उसको, कहा अला आयुन नास सब लोगों की आंखों के सामने, यानी सब के सामने उसको पेश किया जाए, जैसे कोई मुजरिम को पेश करना हो सबके सामने उसको पेश किया जाए, लअल्लाहुम यशहदून ताकि वो सब देखें, क्या देखें, ये नहीं उन्होंने कहा यहां पे कि क्या देखें, बस जैसे हम कहते ना लेके आओ उसको, अब मैं जरा बताऊंगी कि होता क्या इसके साथ, अब ये नहीं बताया कि होता क्या करने वाली हूं मैं, लेकिन अब पता चलेगा कि होता क्या है इसके साथ, तो इसी बात से पता चलता है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज होने वाली। इसी तरह वो कहते हैं लअल्लाहुम यशहदून ताकि वो जरा देखें, फिर यानी देखें क्या कि वो भी देख लेंगे कि जो हमारे बुतों के साथ ऐसा करता है ना, फिर हम उसका हशर क्या करते हैं, ये मतलब है। तो फातू बिहा अला आयुनिन्नास, यानी सबके सामने लाने की क्या जरूरत है, देखो मुशरिक थे मगर इतनी बात उनको भी बड़ी समझ थी, वो सोचते थे यहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो कोई जुर्म नहीं किया लेकिन उनके नजदीक जुर्म था ना, तो वो सोचते थे कि जो भी जुर्म करे उसकी सजा सारी अवाम के सामने होनी चाहिए तभी जुर्म मिटेगा ये, और वाकई यही तरीका होता है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जुर्म नहीं किया मगर सिर्फ आपको बताने के लिए ये बता रहे कि वो सजा सबके सामने देना चाहते थे। इसी तरह हमारी शरीयत में है कि जब हद नाफिस करनी हो, मसलन है कोई जानी है, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई इनकी हद नाफिस करनी हो तो सरे आम सबके सामने, ये कुरान में है कि सबके सामने हद लगाई जाए, ना कि हद चोरी छुपे नहीं है कि वो अब जेलों के अंदर कोई फांसी की जगह है वहां जाके फांसी दे रहे हैं या वहां पे जाके कर रहे हैं और किसी को नहीं पता और बिल्कुल खामोशी के साथ दी जा रही है, यानी सजा भी देते हैं तो डर डर के देते हैं। हालांकि इस्लाम कहता है कि नहीं, चौक में दो, सबके सामने दो के लोगों को इबरत आए और आइंदा कोई जुर्म ना करे, ये है इस्लाम का तरीका और यही सही तरीका और इसी से जुर्म मिटता है। हम सजाओं को तो छुपाते हैं और जुर्म की तशहीर के लिए प्रोग्राम बना के तो उनको यानी उनके एक्टर्स रख के और फिर उनको प्ले करके दिखाते हैं कि कैसे ये जुर्म हुआ ताकि किसी को नहीं भी पता हो तो वो भी जरा सीख ले कि जुर्म करना कैसे है, मगर ये नहीं करते कि देखो सरे आम अगर किसी को कहीं फांसी घाट लगाया जाए और फांसी दी जाए कितना हद तक आप सोच सकते हैं कि जुर्म कम हो जाएगा, 100 दफा कोई सोचेगा फिर जुर्म करने से पहले, लेकिन सजा का चूंकि बिल्कुल खौफ खत्म हो चुका है हमारे माशरे से इसलिए लोग बेदरे होके जुर्म किए जाते हैं, किसने पकड़ना और किसने को सजा देनी। तो उन्होंने कहा कि लेकर आओ सबके सामने ले आओ, कालू उन्होंने आके कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अंता फालता हादा, अब देखें यहां पे भी ये नहीं कहा कि तुमने तोड़ा है हमारे बुतों को, तुमने तुमने किया ये काम भी आली हातिना हमारे इलाहों के साथ, या इब्राहिम है इब्राहिम, यानी अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तुमने ये काम किया, अब कहे ना कि तोड़ तोड़ के फेंका हुआ इनको, तो तुमने किया हुआ। काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, देखें इस वजह से इनको ये बात, ये जो काम किया था ना, ये भी इनको दावत देने के लिए किया था, ताकि ये सोचें जरा, इनकी अकल को जगाने के लिए ये काम किया था। और उसी की तरफ आ रहे हैं अब, देखें इनको मौका मिला कि अब ये बात करें, और अपील करती है ये बात अकल को भी। काला बल फ़ालहु कबीरुहुम, उसने कहा कि बल्कि किया है इसको, हो सकता है इसके ये बड़े ने किया हो ये काम, आजा ये इसने ये किया हो, ये जो बड़ा खड़ा हुआ, हो सकता है तुम्हारे इस बड़े ने किया हो। फसअलूहुम, तो पूछो उनसे, इन कानु यमतकून, अगर ये बोलते हैं, ये जो सारे गिरे पड़े हैं, इनसे पूछ लो कि ये बताएं ना कि इनको बड़े ने तोड़ा, क्यों बड़े ने तोड़ा होगा ये बताने के लिए, तो बड़ा जाहिर है वो बड़ा है, उसने कहा होगा कि मेरे ये छोटे छोटों की क्यों इबादत हो रही है, तो उसने सारों को तोड़ दिया होगा। अब क्या ये बात सच है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल फ़ालहु कबीरुहुम, अगर इसको इस तरह देखा जाए कि इसने किया, बड़े ने ये काम किया, क्या ये बात सच है? सच तो नहीं है, मगर ये झूठ भी नहीं है, ये याद रखें, बल्कि इसको कह सकते हैं खिलाफे वाकया बात। कज़्ब जो होता है ना, किज़्ब जो होता है, वो किज़्ब खिलाफे वाकया बात भी हो सकती, किज़्ब का लफ्ज उसके लिए भी आ सकता है। और ये इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करने के लिए, एक तो हम जिसको झूठ कहते हैं किज़्ब, वो एक अलग चीज है, और खिलाफे वाकया बात होना एक अलग चीज है। किज़्ब के अंदर खिलाफे वाकया बात भी आ जाती है और झूठ भी आ जाता है, लेकिन जो हम उर्दू में झूठ जिस लफ्ज को कहते हैं ना, वो अलग होता है और खिलाफे वाकया बात अलग होती है। अब जरूरी नहीं जो खिलाफे वाकया बात हो वो हमेशा कोई गलत बात ही हो, वो नहीं है जो कि असल थी, लेकिन वो उसके खिलाफ कुछ और बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कयामत के दिन घबराए होंगे, जिस वक्त उनके पास भी लोग आएंगे कि आप अल्लाह के पास हमारे लिए सिफारिश करें कि आके अल्लाह ताला हमारा फैसला फरमाए, क्योंकि फैसला नहीं हो रहा होगा ना, तो बहुत सारे पैगम्बरों के पास जाएंगे, उनमें आपको याद होगी वो हदीस के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी जाएंगे, तो वो कहेंगे अपने तीन किज़्ब की वजह से परेशान होंगे। अब हालांकि वो तौरियां हैं, किज़्ब नहीं है, मगर वो कहेंगे उस दिन कि अल्लाह ताला इतने गुस्से में है, इतने गुस्से में है कि मुझे तो अपने वो जो तौरियां हैं उनके बारे में भी डर लगता है कि कहीं उनकी ना पूछ हो जाए। क्योंकि ये किस क्यों नहीं था, इसलिए कि ये दावत देने के लिए था, ये उनकी अकल को अपील करने के लिए था, उनकी अकल को जगाने के लिए, जैसे आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और फिर उसके जरिए लोगों को समझाते हैं, ये उसके लिए था। ठीक है, अब याद रखें कि जो बात कुरान में आती है ना कि झूठों पे अल्लाह की लानत की गई है, वो यहां पे नहीं आ सकती, इसलिए कि यहां जो बात है ये झूठ नहीं है, खिलाफे वाकया बात है। और इसी को तौरिया कहते हैं कि अगर मकसद नेक हो, इस्लाह हो, तो कोई हर्ज नहीं है कि इंसान कोई ऐसी बात कर ले जिससे इस्लाह का पहलू निकलता हो। जैसे कि सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों के दरमियान सुलह करवाता है वो झूठा नहीं होता। समझ आ गई बात? क्योंकि वो झूठा कैसे हो सकता है, वो तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है, वो अच्छाई को फैला रहा है। वो अगर कोई बात ऐसी कह भी देता है कि देखो उसने ऐसे कहा, या उसने नहीं इस तरह से नहीं हुआ, या ऐसे कुछ उसको मेंड करने के लिए कोई ऐसी बात कर देता है जो वाकयातन सही नहीं होती, तो उस पर भी उसको कोई गुनाह नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो उनमें नहीं आता जो झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे कोई अपने शौहर को जाके आप कहती हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, अब हो सकता है कि वो उतने अच्छे ना हो, लेकिन जब आपने ये कहा तो ये झूठ नहीं है। ठीक है, ये मोहब्बत बढ़ाने के लिए, और ये ऐन सवाब का काम है, ये सुलह करने के लिए, ये अच्छाई के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया किया, तौरिया वही है जिसका मकसद नेक हो, चाहे वो खिलाफे वाकया बात हो, उन्होंने ये दावत देने के लिए किया था, उनका कोई मकसद ये नहीं था कि हाय मेरी जान बच जाए, कहीं ये मुझे कुछ कह ना दें, या कोई मैं अपना फायदा उठा लूं, या मैं अपनी कोई ऐसे बात कर लूं, उसके लिए नहीं था। तुम पूछो ना इससे, ये बड़े नहीं, बल्कि हो सकता है इसी ने किया हो ये काम, ये अगर बोलते हैं तो इनसे पूछो। फराजाऊ इला अनफुसिहिम, तो वो उन्होंने रुजू किया अपने नफ्सों की तरफ। यानी क्या मतलब नफ्सों की तरफ? यानी अपने अंदर गौर करने लगे, अपने अंदर अपनी तरफ पलटे, अपने दिलों की तरफ पलटे, दिल ही दिल में सोचने लगे। फकालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, तुम ही बेशक जालिम हो, तुम जो बात कर रहे हो ना गलत कर रहे हो। यानी अब अंदर से एक दिल की गवाही भी होती है ना, एक इंसान की फितरत भी होती है। अल्लाह ने फितरत तो इंसान की, उसमें इस्लाम ही रखा है ना, तो अपने दिल में बात कर रहे हैं और अपने आप को खुद मान रहे हैं कि वाकई बात तो ये सही कह रहा है। और अब ये बात सुन के ना लाजवाब से हो गए और खामोशी से अपने अंदर ही ये सोचने लगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर शैतान छोड़ता थोड़ी है। हम भी अगर कभी गौर करें, जैसे कभी गलत बात हम कर रहे होते ना, तो एक दफा दिल में ख्याल जरूर आता है, वैसे तुम सही कर तो नहीं रही, बात तो गलत। उसी वक्त फिर आप कहने लगते, नहीं नहीं इसने भी तो मेरे साथ ऐसे किया, नहीं तो फलाने वक्त में ये नहीं हुआ। वो याद रखें, वो वाली बात फिर शैतान की तरफ से होती है। लेकिन वो जो एक अंदर एक दफा बात आती है ना, वैसे सही नहीं हुआ, ये जो मैंने किया है सही नहीं किया, वो जो एक स्प्लिट सेकंड के लिए जो बात आती है ना, वो ही होती है जो इंसान की फितरत अंदर से बोलती है, जो जमीर अंदर से बोलता है। तो वो जो जमीर अंदर से बोला ना, उसने कहा कि गलत कर रहे हो वैसे तुम, हैं तुमने ये वाकई बात तो इसकी सही है कि फिर ये क्या बोल सकते हैं, ये टूटे पड़े हैं यहाँ पे, ये क्या जवाब देंगे, इनसे क्या पूछा जाएगा, और ये बड़ा कैसे इनको मार सकता है, ये तो खुद बुत है। अल्लाह अकबर। सुमन नुकी सुला रूसी, फिर वो उल्टाए गए अपने सरों पे, यानी फिर फ्लिप हो गए, फिर वापस वही शैतान ने वसवसा डाला, फिर अपने वो ही उनकी मत मारी गई, फिर पलट गए वापस और कहने लगे, लकद अलिम तमाहा उलाइयम ते खून, तू जानता है, तुझे अच्छी तरह पता है कि जब ये बात कर ही नहीं सकते तो हमें कह रहा है इससे पूछो, जो अच्छी तरह पता है ये बोल नहीं सकते। अब ये देखें, ये बात भी, ये जो जवाब था ना उनका, वो उन्हीं की बात के खिलाफ था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने आपको बताया ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनकी अकल को जगाना चाहते थे, वो उन्होंने जगा दी, वो उनको उन्होंने लाजवाब कर दिया, खामोश करा दिया कि वाकई अब ये अगर काम ना होता तो वो कभी सोच ही नहीं सकते थे ये बात। बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते कि ना ये बोल सकते हैं, ना ये अपना कुछ फायदा कर सकते हैं, ये खुद अब कह रहे हैं अपनी जुबान से, ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि ये कहाँ बोल सकते हैं, इन बेचारों को क्या इनके पास पावर है बोलने की कि ये कुछ कह सके। ये देखिए ना, खुद उनके अकीदे के खिलाफ बात चली गई ना, ये बेचारे ऐसे गिरे पड़े हैं, देखो इनकी क्या वैल्यू है। तो जोरदार तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत पहुंचा दी, और उसके लिए ये करना जरूरी था, और तब ये झूठ नहीं बनता है। ये एक एग्जाम्पल के साथ बताया उनको, और कुल्हाड़ी भी तो बड़े वाले के ऊपर रख दी थी ना कि नहीं नहीं तुम पूछ लो ना इससे, तो वो अब खुद अकल इंसान की कहती है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तोड़े। तो फिर अगर वो ना उसके अंदर ताकत है, तो ना इन टूटों में ताकत है, तो फिर तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? यही काम होता है एक पैगंबर का, कि हक और बातिल को वाजे करके दिखा दे, क्लियर करके दिखा दे, बाकी कोई मानता है या नहीं मानता ये नहीं उनका काम होता। हक जरा हक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए लोगों के आगे, और वाकई क्लियर हुआ, इसीलिए उनके दिल ने ये पुकारा कि नहीं ये बात सही नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे से खुद फरमाने लगे, काला अफतअबुदूना मिन दूनिल्लाह, फिर तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा उसकी, मा ला यनफाउकुम शैअ वला यदुर्रुकुम, जो ना तुम्हें नफा पहुंचा सकता और ना नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ भी नहीं तुम्हारा कर सकता। खुद सोचो, जो अपना नफा नुकसान नहीं कर सकता, ये टूटे पड़े गिरे हुए हैं, ये इतने बेयारो मददगार हैं। चलो अगर हम ये सोचें, लेट्स से फॉर मोमेंट ये सोच लेते हैं कि नहीं वो बुत थोड़ी कुछ कर सकते, उनका तो अकीदा कि वो हस्तियां जो है उनके पीछे जो है उनकी वो पूजा करते हैं, तो वो हस्तियां ही फिर अपने बुत ना तोड़ने देती जिनको राजी करने के लिए बुत परस्ती हो रही थी, वो हस्तियां कहाँ है फिर, वो अपने बुत तोड़वा रही है। तो अपने तोड़ने वाले का जो कुछ खुद बिगाड़ नहीं सके, वो तुम्हारा क्या काम करेंगे? यही तौहीद की दलील है। कि देखो जिनकी तुम पूजा करते हो वो खालिक है या मखलूक है, नंबर टू क्या वो नफा नुकसान दे सकते हैं या नहीं। देखो जब वो हस्तियां चाहे वो कोई इंसान ही थे कोई नेक लोग ही थे जब वो जिंदा थे तब वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते थे, तो जब उनको मौत आ गई तो वो अपनी तो क्या दूसरों को भी उनके नुकसान से बचाने शुरू हो गए, लोगों को लादे भी देना शुरू हो गए, वो लोगों के काम भी करना शुरू हो गए। ये कैसी बेअकली की बात है, वो कैसे इलाह हो सकते हैं, वो कैसे लोगों की हाजतें पूरी कर सकते हैं। हाँ अगर हो सकता है कोई ये कहे कि नहीं जी जिंदगी में तो नहीं कर सकते थे, मरने के बाद उनको जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि भाई हम जिंदगी में तो वो बीमार भी हुए बेचारे मर भी गए, उनको हम लेके गए कब्र में भी हमने खुद दफनाया, खुद बेचारे चल के भी नहीं अपनी कब्रों तक जा सकते थे, गुसल भी हमने खुद दिया, वो अपना शावर भी खुद नहीं एंड का आखिरी ले सकते थे, तो अब तुम्हारे काम वो कैसे बना सकते हैं। तो कहते नहीं वो जिंदगी में नहीं कर सकते थे, मरने के बाद बस अल्लाह ने उनको स्पेशल इख्तियार दे दिए। तो फिर उनसे आप पूछेंगे हा तू बुरहानकुम, दलील लेकर आओ इस चीज की कि उनके पास स्पेशल इख्तियार आ गए। कौन सी कुरान की आयत कहती है कि मरने के बाद अल्लाह ताला स्पेशल इख्तियार दे देता है, इनके हाथों में ही दे देता है, जो मर्जी करते रहें, जिसको मर्जी बच्चे दे दें, जिसको मर्जी सेहत दे दें, जिसको मर्जी माल दे दें, इसकी लेकर आओ ना दलील। जिंदगी में तो वो अपनी भी जान नहीं बचा सके, मरने के बाद वो लोगों की जानें बचा लेते हैं, उनको जिंदगियां दे देते हैं, ये लाओ इसकी दलील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहलवा दिया कि आप कह दें कि मैं तुम्हारे नफे नुकसान का कोई मालिक नहीं, तो इसके बाद और कौन हो सकता है जो उनसे बढ़ के और कहे कि हाँ हाँ ये तो हमारे नफे नुकसान के मालिक है। इसके बावजूद हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, सारे नबी तेरे दर के सवाली, ये कहां से बना लिए जब वो खुद फरमा रहे हैं कि मैं तो अपने नफे नुकसान का भी मालिक नहीं। अल्लाह क्या करें, हमारी अकलों के ऊपर जब पर्दा पड़ जाता है तो फिर इस तरह की बातें ही होती है ना। उफ़िन लकुम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफसोस है तुम्हें, उफ है तुम पे, यानी इतना बेजारी का कलमा है। देखो कुरान कैसे तौहीद सिखाता है, फिर कोई ब्लाइंड बनना चाहे तो फिर भी इसके बाद ब्लाइंड बने रहते हैं। क्या है इसके अंदर जो समझ से बाहर बात हो, कितनी आसान आम फहम जरिए से बताया जा रहा है, तौहीद सिखाई जा रही है, इसके बावजूद अगर कोई ये कहे हमें तो समझ ही नहीं आती, कोई लोग कहते हैं कब्रों पे जाना गलत है, कोई लोग कहते हैं नहीं जा सकते, पता नहीं है कौन सही है। वो नहीं, अगर पता तो कुरान खोल के देख लो तुम्हें पता चल जाएगा। क्या अल्लाह ने तौहीद ही का सबक ना दिया होगा, जिसके लिए सारे पैगंबर उसने उतारे एक पैगाम को देने के लिए, एक बात सिखाने के लिए, क्या उसने उसको क्लियर ना किया होगा अपनी किताब में? आने वाली रहती दुनिया तक जितने लोग आए क़यामत तक उनके लिए क्या अपनी किताब में ना समझाया होगा? फिर आप कैसे कंफ्यूज रह सकते? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उफ है तुम पे वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और उनके लिए भी जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, अफला ताकिलून, तुम अकल से काम नहीं लेते, तुम्हें समझ नहीं आती ये बात। अब आप सोचिए कितनी सिंपल बात थी जो उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो अफसोस है तुम पे कि जो तुम कर रहे हो और जो तुम्हारे ये बुत हैं इन पे भी अफसोस है, ये कितने हकीर हैं अल्लाह के मुकाबले में, तालिब और मतलूब दोनों ही कमजोर हैं। तो उफ़ लकुम ऐसा कलमा है जैसे इंसान अपना सर पकड़ लेता ना कि क्या है तुम्हें क्यों नहीं समझ आती, अफसोस है तुम पे।